कहना है रहना है घर माँ सुरक्षित रहना है लड़ना है लड़ना है सब झनला मिलके लड़ना है।
यूनिसेफ और सीआरए के सहयोग से अरपार रेडियो की प्रस्तुति स्वास्थ्य संकल्प।
मुश्किल घड़ी है संगवारी जन जन के अब जिम्मेदारी
जीवन है अनमोल कर ले स्वस्थ रहने का संकल्प देते रहेंगे मंत्र हम करने को कायाकल्प।
जन जन के साथ है ता फिर आए खुशहाली
स्वास्थ्य संकल्प
भारत मुस्कुराए छत्तीसगढ़ मुस्कुराए।
यूनिसेफ और सीआरए के सहयोग से अरपार रेडियो की प्रस्तुति स्वास्थ्य संकल्प के एक और अंक में स्वागत है आप सभी श्रोता साथियों का। एक तूफान की तरह आया कोरोना हमारी जिंदगी में। 2 सालों तक लगातार हम उससे जूझते रहे, अपने आप को बचाते रहे, अपने घर के लोगों को बचाते रहे, मास्क लगाकर, टीके लगवाकर, लोगों से दूरी बनाकर, लेकिन अब भी पूरी तरह कोरोना गया नहीं है। 2 गज की दूरी, भीड़ में लोगों से बनाकर रखें दूरी, ये सारी प्रक्रियाएं अब लोगों की आदत बन चुकी है। हर वक्त एक मन में दहशत होती है कि ना जाने कौन सा वेरिएंट फिर से आ जाए वापस। और जब बात बच्चों की जिंदगी की हो तो उसमें 2 साल बहुत मायने रखते हैं। कोरोना की वजह से घर में कैद रहे बच्चों में कई तरह के बदलाव अभी भी देखे जा रहे हैं। हमारे परिचितों में 7वीं क्लास में पढ़ने वाला एक बच्चा कभी क्लास का सबसे शांत बच्चा था और अब वो जब 9वीं क्लास में पहुंच गया है और ऑफलाइन स्कूल जाना शुरू किया है तो पेरेंट्स को क्लास टीचर ने बताया कि अब वो बहुत बोलता है, अपने साथियों को परेशान करने लगा है, कई बार वो खुद से ही बातें करता रहता है। अब पेरेंट्स इस उलझन में हैं कि उनका बच्चा घर में अपने कमरे में चुपचाप बैठा रहता है तो बाहर जाकर इतना कैसे बोल सकता है। इस तरह के बहुत से बदलाव बच्चों में लगातार देखे जा रहे हैं। हमारी बात असल में हमारी एक परिचित शिक्षिका से हो रही थी और उसने कई किस्से हमको इस तरह के बताए। एक और किस्सा बताते हैं हम आपको। 6ठी क्लास में एक नई लड़की पढ़ने के लिए आई। उस वक्त आई जब कोरोना की वजह से स्कूल बंद कर दिए गए थे। ऑनलाइन पढ़ने के लिए उस बच्ची को एक मोबाइल फ़ोन दिया गया था जो अब हर वक्त अपने आसपास उसको चाहिए होता था। पहले ऑनलाइन क्लास ख़त्म होते ही फ्रेंड्स के साथ चैटिंग शुरू हो जाती थी या फिर कोई मोबाइल गेम, लेकिन स्कूल में वो बिल्कुल चुप सी हो जाती है। लास्ट बेंच पर बैठना पसंद करती है, किसी से बात करने से कतराती है, टीचर्स का सामना नहीं करना चाहती है। अब बताइए इस तरह के बदलावों के बारे में आप क्या कहेंगे। इसी तरह हमारी उन परिचित शिक्षिका ने एक किस्सा और बताया कि UKG में पढ़ने वाले एक बच्चे के लिए स्कूल में 2 घंटे का समय बिताना भी मुश्किल हो जाता है। उसके चेहरे पर लगे मास्क और पॉकेट में लगे सैनिटाइजर को कोई छू भी ले तो घबरा जाता है। जितने दिन स्कूल खुले मम्मी को स्कूल के बाहर बैठना पड़ा और कई बार उसे लेकर उनको घर भी लौटना पड़ा। उसे रोता देखकर क्लास के दूसरे बच्चे भी रोने लगते थे। बच्चों से जुड़ी इसी तरह की कुछ और बातों के बारे में हम कुछ देर बाद आपसे चर्चा करते हैं। फिलहाल हम आपको चलते हैं मधु जोशी से मिलवाने। अब आप कहेंगे ये कौन है? ये असल में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। आंगनबाड़ी में क्या होता है, टेक होम राशन कैसे उपलब्ध कराया जाता है, कब उपलब्ध कराया जाता है, किनको उपलब्ध कराया जाता है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि पोषक तत्व तो गाँव में घर घर कैसे पहुंचाए जा रहे हैं, इस सब बारे में मीनू सिंह ने इनसे बातचीत की। पहले ये बातचीत सुन लेते हैं फिर कार्यक्रम में आगे बातें करते हैं।
भारत मुस्कुराए छत्तीसगढ़ मुस्कुराए।
श्रोताओं आज हमारे साथ हैं मधु जोशी जी, आप आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई हैं। मधु जी सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
नमस्ते।
मधु जी आप आंगनबाड़ी से जुड़ी हैं तो वहाँ क्या काम करती हैं, आप किस पद पर काम करती हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिए।
जी पहले तो मैं अपने बारे में कुछ जानकारी बता दूं। मेरा नाम मधु जोशी है और मैं कोरबा छत्तीसगढ़ से हूँ और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पे पदस्थ हूँ। और मेरा सेक्टर मुड़ापार है और मेरा आंगनबाड़ी रामनगर 2 है।
अच्छा, यहाँ पर आपके आंगनबाड़ी में कितने बच्चे हैं?
मेरे आंगनबाड़ी में अगर पूरे एरिया के बच्चे लोग के बारे में अगर बताऊं तो 130-135 मतलब 0 से लेके 6 वर्ष तक के बच्चों को हम लोग दर्ज करते हैं।
अच्छा,
तो इसमें है हम लोग का 130-135 टोटल होगा। और जैसे और बाकी बच्चे लोग को किशोरी लेते हैं तो किशोरी तो अभी नहीं लेते हैं फिलहाल, खाली हम लोग 0 से 6 वर्ष के बच्चे, शिशुवती माता और गर्भवती माता, इन्हीं को ज्यादा हम लोग सेवाएं देते हैं।
अच्छा, आपका काम क्या होता है, मतलब सेवा को किस तरह की सेवा आप प्रदान करते हैं वहाँ से?
0 से 6 वर्ष के बच्चे जो रहते हैं ना, उन लोग को टीकाकरण करवाना, कोई भी लेडीज गर्भवती होती है तो शुरू से लेकर हम लोग बच्चे को 2 साल का उम्र होते तक हम लोग उसकी विशेष देखभाल करते हैं, जिसको हम लोग 1000 दिन की सेवा बोला जाता है। तो इसमें हम लोग प्रसव से पूर्व देखभाल, टीकाकरण, पूरक पोषण आहार और 15 से 45 आयु की जो महिलाएं होती है उनको पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा देने का काम करते हैं।
जी, तो पूरक पोषण आहार ये क्या चीज है?
जी, पूरक पोषण आहार जो है आंगनबाड़ी से रिलेटेड है, रेडी टू ईट। रेडी टू ईट फूड जो रहता है वो 6 माह से 3 वर्ष के सामान्य बच्चों को दिया जाता है और 6 माह से 3 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चे लोग को भी दिया जाता है। अभी 3 से 6 के बच्चे लोग को भी दिया जाता है रेडी टू ईट। और साथ ही साथ ये पूरक पोषण आहार जो है गर्भवती माता और शिशुवती माता रेडी टू ईट के माध्यम से दिया जाता है, जिसका मतलब अलग अलग मात्रा में दिया जाता है।
जी,
जैसे कि ये शिशु के लिए जो आता है मुख्यमंत्री शिशु शक्ति आहार बोला जाता है जिसको,
जी,
वो होता है 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों के लिए होता है, सामान्य और मध्य कुपोषित।
अच्छा।
इसमें मतलब इसकी मात्रा होती है हमारे पास 750 ग्राम और इसमें मिला रहता है गेहूं 30 ग्राम, चीनी 27% और चना 20%, सोयाबीन 10%, मूंगफली 5%, सोयाबीन तेल 5% और रागी 3%। और यही गर्भवती माता को भी दिया जाता है जो होता है 900 ग्राम का, जिसमें जो इंग्रेडिएंट्स आपको बताई हूँ जो भी मात्रा है प्रतिशत में वो उतनी ही होती है चाहे वो धात्री हो या गर्भवती, मगर ये जो है ग्राम में अलग अलग रहता है। धात्री माता को भी 900 ग्राम ही दिया जाता है।
अच्छा, तो ये आप कैसे डिसाइड करते हैं कि ये बच्चा ज्यादा कुपोषित है, ये बच्चा कम और मध्यम कुपोषित है, इसको कैसे डिसाइड करते हैं आप लोग?
इसके लिए हम लोग हर महीने बच्चे लोग का वजन लेते रहते हैं।
हाँ?
और बीच में हर साल हम लोग के विभाग के द्वारा वजन त्योहार का आयोजन किया जाता है और हर महीने हम लोग तो वजन लेते ही लेते हैं, तो इसके माध्यम से हम लोग को पता चल जाता है अगर बच्चा रेड में आता है तो बच्चा होता है कुपोषित, और बच्चा अगर येलो में आता है तो वो बच्चा होता है मध्य कुपोषित। तो मध्य को भी फोकस किया जाता है कि मतलब इसको किस मात्रा में क्या चीज देना चाहिए। तो जैसे 0 से 6 माह का है और 3 से 6 माह 6 माह से 3 वर्ष के जो बच्चे रहते हैं उनको हम लोग विशेष ध्यान देते हैं, और 3 से 6 को तो इन लोग को खाना भी खिलाते हैं गरम पका भोजन 3 से 6 को,
जी।
और इन लोग को जैसे कुपोषित रहते हैं उन लोग को रेडी टू ईट की मात्रा अलग से प्रदान की जाती है।
तो बच्चे आके खाते हैं आंगनबाड़ी में?
जी जी, बच्चे आके खाते हैं। हम लोग की जो सहायिका रहती है साथ में, मेरी सहायिका है माया श्रीवास,
जी,
वो जो है बुलाने जाती है बच्चे लोग को, फिर उसके बाद आते हैं बच्चे खाना खाते हैं और सुबह नाश्ता भी करते हैं। नाश्ते में हम लोग मंगलवार को पोहा बनता है, सोमवार को रेडी टू ईट जो हम लोग को मिलता है उसका अलग अलग वैरायटी से बनाते हैं, कभी उसका बर्फी बना देते हैं, कभी हलवा, कभी लड्डू, कभी मोटा रोटी बना बना के उन लोग को दिया जाता है। हफ्ते में 3 दिन रेडी टू ईट का बनता है और हफ्ते में 3 दिन पोहा फल्ली बनाया जाता है।
अच्छा, इस तरह से अलग अलग जो पोषक तत्व हैं वो बच्चों को प्रदान किए जाते हैं,
मिलते रहता है। जी,
टेक होम राशन वितरण कैसे किया जाता है?
ये जो है ना टेक होम राशन, ये इसके लिए हम लोग उन लोग को पहले ही बता दिए रहते हैं माह के पहले मंगलवार और तीसरे मंगलवार को दो दो पैकेट दिया जाता है। उसके लिए उन लोग को पहले से पता रहता है, और कुछ हितग्राही लोग का नंबर वगैरह रहता है या फिर आस जो भी रहते हैं ना, उन लोग को बुलाने भी जाते हैं। सहायिका लोग जाते हैं, हम भी जाते हैं बुलाने कि चलिए अपना टेक होम राशन ले लीजिए, या फिर उन लोग स्वयं से आ जाते हैं। जिन लोग को आने का आदत रहता है उन लोग आ जाते हैं, नहीं लगता है।
अच्छा, तो ये कैसे सुनिश्चित करते हैं कि वो जो कुपोषण है उसके लिए वो आपका जो टेक होम राशन वो प्रॉपर तरीके से वो लोग खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, उसके लिए क्या जागरूकता भी करते हैं कि आप लोग?
जी जी, हम लोग बीच बीच में इन लोग को जागरूकता के लिए हम लोग का कई तरह का पोषण पखवाड़ा, पोषण माह, और जैसे टेक होम राशन लेने आते हैं उस दिन भी जानकारी देते हैं हम लोग। पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा जिस दिन जानकारी देते हैं उस दिन बोलते हैं कि आप लोग इस चीज का सेवन करिए, और उन लोग जहाँ तक हो सके उतना सेवन भी करते हैं। कई बच्चे तो ऐसे हैं कि उसके अलावा कुछ खाना भी पसंद नहीं करते, छोटे बच्चे लोग, और उन लोग क्या है वजन कराते हैं तो हम लोग को पता चल जाता है कि इन लोग मतलब वजन अभी ग्रोथ आ रहा है नहीं आ रहा है, और नहीं भी आता है तो हम लोग और कंटिन्यू इन लोग को बोलते हैं कि आप लोग टेक होम राशन भी लीजिए, और साथ में मतलब घर का जो भी क्षेत्रीय फल है, मतलब क्षेत्रीय भोज्य पदार्थ है, उसको खिलाइए, हर चीज को खिलाइए। कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसको ना खिलाए पचा नहीं पाएगा, ऐसा नहीं है। हर चीज को, शिशुवती माता को हम लोग जो जैसे डिलीवरी होती है उसके बाद खाना अभी दे रहे हैं, 6 महीने का है तो मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के तहत
जी।
तो आते हैं तो हम लोग यही बताते हैं कि आप लोग हर तरह के खाना खाइए, हर तरह की सब्जी दाल जो भी है हर तरह के खा सकते हैं, किसी चीज से परहेज नहीं करना है। और 3 बार 4 बार आप खाओगे तभी आपका बच्चा ग्रोथ करेगा, और 2 साल में मतलब उसका जो वजन रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा।
तो इसका अपने इलाके में आपको क्या प्रभाव नजर आया है कि ये आंगनबाड़ी खुलने के बाद से उस इलाके में बच्चों में, महिलाओं में क्या परिवर्तन नजर आया?
बच्चों में, बच्चे खुश होकर आते हैं, नाश्ता भी करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, भोजन भी करते हैं, गर्म खाना भी खाते हैं। और महिलाएं ऐसी हैं, कुछ हम लोग के क्षेत्र में तो ऐसा है कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो कामकाजी महिलाएं हैं, घर से मतलब सुबह गई हैं तो सीधा शाम को आने वाली हैं। ऐसे बच्चे लोग के मतलब मम्मी पापा कुछ ज्यादा ही खुश रहते हैं कि मतलब चलो आंगनबाड़ी है तो हम लोग के बच्चे लोग का उतना परेशानी नहीं है कि इन लोग क्या खाएंगे क्या पिएंगे। वही सुबह नाश्ता मिल जा रहा है, दोपहर में गर्म खाना मिल जा रहा है, तो उन लोग को भी मतलब अच्छा ही लगता है। और कुपोषण में जितना हो सके उतना कमी आई है आंगनबाड़ी के रहने से।
चलिए, बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी आपने दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया
जी। धन्यवाद।
भारत मुस्कुराए, छत्तीसगढ़ मुस्कुराए।
तो ये थी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मधु जोशी, जिन्होंने इतने विस्तार से इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को बताई, और इनसे बातचीत कर रही थी हमारी सहयोगी मीनू सिंह। तो हम कार्यक्रम के शुरू में आपसे बच्चों के बारे में बात कर रहे थे, बच्चों की जिंदगी के बारे में बात कर रहे थे, कोरोना के वक्त उन बच्चों में किस तरह के बदलाव आए इस बारे में बात कर रहे थे। हमारे बिलासपुर के पास एक गांव है, ग्राम धड़देई, जहाँ की शिक्षिका का नाम है रानी बरगा। वो 8वीं क्लास की शिक्षिका हैं। उन्होंने बताया कि उनके स्कूल में स्टूडेंट्स की उम्र 13 साल के आसपास है। लॉकडाउन से पहले के बैच की तुलना में इन स्टूडेंट्स को संभालना मुश्किल लग रहा है। हालांकि अब बच्चे थोड़ा सेटल हुए हैं, लेकिन कुछ बच्चों के अजीब बर्ताव पर उनको पेरेंट्स और उनकी जो पिछली क्लास टीचर्स थी उनसे बात करनी पड़ी, ये समझने के लिए कि क्या वे स्टूडेंट्स पहले से ऐसे हैं या कोरोना के दौरान बदलाव आया है। एक स्टूडेंट के पापा ने बताया कि उनका बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, स्कूल में पहुंचकर क्लासरूम से उठकर बाहर नहीं निकलना चाहता, यहाँ तक कि स्कूल में वॉशरूम भी नहीं जाना चाहता। वहीं उनके स्कूल की प्राइमरी क्लास की टीचर ने बताया कि उनकी क्लास के कुछ बच्चे बिना मास्क 1 मिनट नहीं रह सकते। अगर लंच ब्रेक में खाने के लिए मास्क हटाने को कहा जाए तो लोग घबरा जाते हैं। इस बारे में टीचर्स ने एक साइकोलॉजिस्ट से बात की, जिन्होंने बताया कि इन दिनों काफ़ी बच्चे दूसरों से मिलने जुलने से डरने लगे हैं और ये घुल मिलकर रहना नहीं चाहते हैं। क्या पेरेंट्स अपने बच्चों में होते इस बदलाव को देखकर कुछ सोच पाते हैं? अगर नहीं तो सोचिए, ये मानसिक रोग के लक्षण भी हो सकते हैं। मानसिक रोग क्या है? अरे जिस तरह से एक सामान्य बीमारी होती है, बुखार, सर्दी, खांसी, उसी तरह से मानसिक रोग भी हैं। किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाना और अपने बच्चे के लिए काउंसलिंग करवाना कोई गलत नहीं है। इस तरह के बदलावों को नज़रअंदाज मत कीजिए।
आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पा।
मानसिक रोग क्या है, क्या करें, क्या न करें, समझें इसके बारे में आइए सुने डॉक्टर सुजान अग्रवाल से संगीता अग्रवाल की बातचीत।
आप सबको संगीता अग्रवाल का नमस्कार। तो चलिए आज अपने मन को तरोताजा करते हुए बातें करते हैं डॉक्टर सुजान नारायण अग्रवाल जी से। ये हमारे अर्पा रेडियो के लिए बहुत खुशी की बात है कि आज हम एक ऐसे अनुभवी डॉक्टर से बात कर रहे हैं जिनकी करीब 50 शोध पत्र नेशनल और इंटरनेशनल पत्र पत्रिकाओं में छप चुकी है। आप एक सर्टिफाइड रिव्यूअर हैं बहुत से जर्नल्स और साइंटिफिक पब्लिकेशंस में, साथ ही साथ आप एडिटोरियल बोर्ड के सदस्य भी हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, ये बताइए कि मानसिक रोग क्या है?
मानसिक रोग के बारे में लोगों की बहुत गलत धारणाएं हैं। वो ये सोचते हैं कि मानसिक रोग केवल मन का वहम या अंधविश्वास है और उसके लिए किसी तरह इलाज की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मेरा और सभी चिकित्सकों का यही मानना है कि जैसे शारीरिक रोग रहते हैं वैसे मानसिक रोग भी होते हैं। तो मानसिक रोग के बारे में आपको ये जानना चाहिए कि मानसिक रोग क्या है, उसके क्या लक्षण है और तब मरीज को डॉक्टर के पास में जाना चाहिए। यदि आप समय से उसका इलाज करते हैं तो मानसिक रोग भी पूरी तरह से ठीक हो सकता है। जैसे शारीरिक रोग ठीक हो सकता है वैसे मानसिक रोग भी ठीक हो सकता है।
जी
डॉक्टर, तो बताऊंगा आपको मानसिक रोग क्या चीज है।
जी बताइए। और हाँ, और वो कितने प्रकार के होते हैं ये भी प्लीज हमें बताइए।
मानसिक रोग को मनोविकार या मानसिक स्वास्थ्य विकार के नाम से भी जाना जाता है। मानसिक रोग की स्थिति में व्यक्ति की मनोदशा, याददाश्त, स्वभाव आदि की प्रक्रिया पे असर पड़ता है और मनुष्य का अपने सोच पे और अपने भाव पर काबू नहीं रहता है। ये लगभग 4-5 प्रकार के होते हैं जिसमें से जो कॉमन लोगों को होते हैं जैसे कि डिप्रेशन, यानी कि अवसाद, हिंदी में अवसाद बोलते हैं, अंग्रेजी में आप डिप्रेशन उसको बोलेंगे। साधारण प्रकार का डिप्रेशन हर एक को आता है, लेकिन यदि ये लगातार होता रहता है, हमेशा होता रहता है तो ये बीमारी का रूप ले सकती है। दूसरी है भूलने की बीमारी। साधारण क्या, तो हम हर चीज याद नहीं रखते हैं, थोड़ा बहुत भूलते भी हैं लेकिन वो नॉर्मल होती है। लेकिन यदि अभी आपने खाना खाया है और 2 मिनट के बाद भूल जाए कि खाना खाया कि नहीं खाया तो ये बीमारी के नाम से, बीमारी के रूप में पहचाना जाएगा। इस बीमारी को एक नाम भी दिया जाता है, अल्जाइमर्स डिजीज है। फिर और एक प्रकार का है जैसे पार्किंसन है, जिसे मस्तिष्क की नसों से संबंधित है। वो आदमी छोटे छोटे काम भी नहीं कर सकता, जैसे खुद उठा के गिलास का पानी पीना है, सुई में धागा डालना है इत्यादि। डर भी एक बीमारी है, मानसिक रोग है। ज्यादातर लोग डर को और मानसिक फोबिया को एक ही मानते हैं, लेकिन फोबिया और डर दोनों अलग अलग है। साधारण जो डर है वो नॉर्मल चीज है, लेकिन वो आपको दिमाग को बहुत परेशान करने को लग जाए तो वो एक गंभीर समस्या हो जाती है। एक बच्चों में और मानसिक रोग दिखता है जिसको अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बोलते हैं, जिसमें बच्चा हाइपर एक्टिव रहता है और उसके अटेंशन उसमें किसी काम में नहीं लगता है। पढ़ो बोले तो नहीं पढ़ेगा, खेलो बोले तो ठीक से नहीं खाएगा, खाना खाते टाइम कुछ और सोचेगा। तो इसको भी एक बीमारी का नाम दिया गया है और यदि इसको समय पर जांच कराते हैं तो जरूर ठीक होने की संभावना है।
तो हम इस रोग को कैसे पहचाने, इसके लक्षण क्या रहते हैं?
यदि मरीज एनलाइटेंड है, मरीज जानकार है तो मानसिक रोग के लक्षण अच्छे से पहचान सकता है। दूसरे लोग भी यदि इन बातों को ध्यान दें, जैसे माता पिता है और बड़े भाई है, बहन है, यदि वो ध्यान दें इस बात को पहचान सकती है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, मानसिक रोग है। जैसे कि उदास रहना, अगेन डिप्रेशन, मानसिक रोग का सामान्य लक्षण है उदास रहना है, आपकी जान पहचान का जैसे यदि व्यक्ति बहुत उदास रहता है तो उससे बात करें, हो सकता है वो तो मानसिक रोग का शिकार हो। हम ज्यादातर अपने दोस्तों से परिवार से हमेशा मिल के रहते हैं, यदि आप दोस्तों से परिवार से नहीं मिलना चाहते हैं, दूर दूर रहते हैं तो जरूर कुछ न कुछ गलती। मूड का बार बार बदलना, जैसे कि छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होना या फिर किसी बात पर प्रतिक्रिया नहीं देना, तो जरूर कुछ न कुछ दवा देने की जरूरत पड़ सकती है। या असामान्य बर्ताव, नॉर्मल बर्ताव तो हम सब जानते हैं कि नॉर्मल बर्ताव कैसा होता है, लेकिन यदि असामान्यता नजर आए तो जरूर कुछ गड़बड़े। कुछ लोग अचानक से गुस्सा होने लगते हैं या हंसने लगते हैं तो ये मानसिक रोग का संकेत है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।
बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और परिवार के सदस्य यदि देखते हैं कि ऐसा कोई हो रहा है व्यवहार तो उसे भी समझाना चाहिए,
क्योंकि मरीज खुद नहीं बता पाता है कि उसको मानसिक रोग हुआ है। तो यदि आप इन लक्षणों को जानते हैं, आप उनके परिवार से हैं, यदि आप उनके मित्र हैं, आप उनके भाई हैं, तो जरूर आपको इस बात को पहचान के मरीज को डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। एक और मानसिक रोग का लक्षण है कि बहुत ज्यादा घबराहट लगना या डर लगना। नॉर्मल तो डर हम सबको सभी लगता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा 24 घंटे घबराहट होने लगे तो जरूर कुछ न कुछ दवा की जरूरत है।
अच्छा ये बताइए डॉक्टर साहब, इसके क्या कारण हो सकते हैं मानसिक रोग के?
हाँ, मानसिक रोग के क्या कारण है एकदम सटीक कारण तो बताना मुश्किल है, लेकिन कुछ कुछ कारण है जिसके कारण मानसिक रोग होने की संभावना ज्यादा रहती है। उसमें से बहुत मुख्य कारण है पारिवारिक माहौल का सही नहीं होना। हम लोग भारतीय लोग ट्रेडिशनली संयुक्त परिवार के लोग हैं, लेकिन अभी के माहौल में धीरे धीरे संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं, एकल परिवार बनते जा रहे हैं, और यदि एकल परिवार है तो उसमें बड़े लोगों का सपोर्ट नहीं होने के कारण में यदि रोज लड़ाई झगड़े होते हैं तो उसका बच्चों पर बुरा असर पड़ता है, और तब वो जब उनके ग्रोथ का समय है उस टाइम में भी परिवार का माहौल ठीक नहीं है तो वो भविष्य में मानसिक रोग के शिकार हो सकते हैं। और एक बहुत नॉर्मल का कारण हो सकता है जैसे कि सिर में चोट लगना। आजकल जो व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति के पास में कोई कोई व्हीकल है, टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है। यूजली टू व्हीलर में हम हेलमेट वगैरह पहनने का ध्यान नहीं रखते हैं जब तक कि पुलिस वाला न टोके, लेकिन वो आपके खुद के बचाव के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है। सिर पर चोट लगने से भी घाव वगैरह भरने के बाद मानसिक रोग थोड़ा बहुत होने की संभावना हो सकती है। बचपन में बच्चे खेल खेल में या कोई दुर्घटना हो गई हो तब, या बचपन में माँ बाप का देहांत हो जाना, या किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाना, या कक्षा में फेल हो जाना मन के ऊपर बहुत आघात पहुंचाता है। बच्चों का दिमाग और शरीर नाजुक रहता है, इस टाइम उनको बहुत सपोर्ट की जरूरत होती है। यदि वो सपोर्ट नहीं मिल पाता है तो वो मानसिक रोग के शिकार हो सकते हैं। और एक, हम रोज खाना खाते हैं लेकिन बाहर का खाना खाने में आजकल ज्यादा लोग ध्यान रखते हैं, बिल्कुल बाहर खाना खाना है या समय से खाना नहीं खाना है या रात को 2 बजे तक के जगना है, तो कालांतर में इसके भी मानसिक रोग होने की संभावना है। और भी नशीले पदार्थ जैसे कि शराब का सेवन, पहले घरों में एकदम वर्जित था लेकिन अभी शराब का सेवन घरों में कुछ कुछ लोग मॉडर्नाइजेशन के नाम पे करने लग गए हैं, तो वो भी मानसिक स्वास्थ्य को बहुत खराब करते हैं।
जी हाँ।
तो यदि इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो मानसिक रोग होने की संभावना ही कम हो जाती है। ज्यादा जरूरी यह है कि मानसिक रोग हो जाए उसके बाद इलाज करें, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि मानसिक रोग होने ही न दें, यानी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
मानसिक रोग क्या है और कैसे पहचाने, डॉक्टर सुजान अग्रवाल से संगीता अग्रवाल की बातचीत अभी आपने सुनी। और बस आज के स्वास्थ्य संकल्प कार्यक्रम में इतनी ही जानकारियाँ। अगले अंक में कुछ और महत्वपूर्ण बातें लेकर हम फिर आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।
रहना है घर माँ सुरक्षित रहना है, लड़ना है सब झनला मिल के लड़ना है।
यूनिसेफ और सीआरए के सहयोग से अर्पण रेडियो की प्रस्तुति स्वास्थ्य संकल्प।
मुश्किल घड़ी है संगवारी, जन जन के अब जिम्मेदारी।
जीवन है अनमोल, कर ले स्वस्थ रहने का संकल्प। देते रहेंगे मंत्र हम करने को कायाकल्प।
जन जन के साथ है ता फिर आ ही खुशहाली।
स्वास्थ्य संकल्प
भारत।
मुस्कुराए, छत्तीसगढ़ मुस्कुराए।